रविवार 14 जून के दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने माना ललित मोदी के बारे में ब्रिटिश उच्चायुक्त से की थी बात। विपक्ष ने मांगा इस्तीफा, पार्टी ने किया बचाव। वन रैंक वन पेंशन की मांग पर पूर्व सैनिकों ने सरकार को वापस किए मेडल।
मेडल तो हम 6 साल से देते आ रहे हैं लगातार, सभी मेडल हमारे पास, कोई मेडल नहीं, सब यहाँ पे दिए, इसलिए कि हमारे को, हमारा जो हक है, हमारे को हक नहीं मिलता।
संडे दिन भर में आज सुनेंगे एक पुरानी मुलाकात गजल गायक मेहदी हसन से।
चम चम चमके चांदनी रे, जैसे चांदी रखे।
होंगी खबरें खेल की भी, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। ललित मोदी वीजा विवाद मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे के विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए सरकार और बीजेपी ने उनका बचाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुषमा स्वराज ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की मदद मानवीय आधार पर की है। सुषमा स्वराज पर ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलाने में मदद करने के आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ये क्वात्रोची को विदेश भगाने जैसा मामला बिल्कुल नहीं है। किसी धूमकेतु पर उतरने वाले पहले अंतरिक्षयान फिले ने 7 महीने बाद धरती पर वैज्ञानिकों से संपर्क किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंतरिक्षयान फिले ने पिछले साल धूमकेतु 67P पर उतरने के बाद सिग्नल भेजना बंद कर दिया था। अब धूमकेतु सूर्य के पास पहुंच गया है, जिससे फिले को सोलर पैनल के जरिए ऊर्जा मिल रही है। फिले को धूमकेतु पर बर्फ और चट्टानों के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार मार्क मैक कॉर्करेन ने कहा, पिछले साल नवंबर में सूर्य से काफी दूर होने के कारण फिले पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही थी। फिले एक गड्ढे में छिपा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सूरज के नजदीक आने की वजह से फिले के सोलर पैनल पर रोशनी पड़ रही है। अब इसकी बैटरी भी चार्ज हो गई है। हो सकता है कि फिले कुछ दिनों से पहले से काम करने की स्थिति में आ चुका था, लेकिन संदेश भेजने जितनी ऊर्जा नहीं थी। फिले ने धूमकेतु के आसपास चक्कर काट रहे रोसेटा यान से कल रात संपर्क किया था। ये थे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार मार्क मैककॉर्करेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में होने वाली बातचीत के एक दिन पहले हूती विद्रोहियों ने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब की सीमा से लगे उत्तरी यमन के एक प्रांत की राजधानी पर कब्जा कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने अंतरिम आदेश जारी कर कहा है कि सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर देश छोड़कर नहीं जा सकते। अदालत ने कहा कि जब तक बशीर को गिरफ्तार कर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश करने के मामले में दायर एक याचिका की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक बशीर को दक्षिण अफ्रीका में ही रुकना पड़ेगा। सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर अफ्रीकन यूनियन समिट में हिस्सा लेने के लिए जोहानसबर्ग में मौजूद हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उन पर युद्ध संबंधी अपराध और जाति संहार के आरोप हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बच्चों को पोलियो का टीका नहीं दिलवाने वाले परिवारों को प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। जैसा कि अभी आपने खबरों में सुना, भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बारे में ये जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की मदद की थी उन्हें विदेश में रहने के लिए दस्तावेज हासिल करने में। सुषमा स्वराज ने ये तो माना है कि उन्होंने ललित मोदी के बारे में ब्रिटिश उच्चायुक्त से बात की थी, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने मानवीय आधार पर यह काम किया था। ये बात 2014 की है और मामला सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने विदेश मंत्री को घेर लिया है, वो उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के शीर्ष नेता उनके बचाव में उतर आए हैं। पूरा ब्यौरा सुनिए अमल चौधरी से।
केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को मदद देने के आरोप में घिरने के बाद राजनीति में भूचाल आ गया है। अनेक विपक्षी दलों ने विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। सुषमा स्वराज पर ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलाने में मदद के आरोप लगे हैं। उन्होंने ट्वीट कर माना कि उन्होंने इस बारे में ब्रिटेन के उच्चायुक्त से कहा था और प्रमुख ब्रितानी सांसद कीथ वास से भी उनकी इस मामले पर बात हुई थी। हालांकि सुषमा स्वराज ने कहा है कि उन्होंने मानवीय आधार पर ऐसा किया, क्योंकि ललित मोदी ने उनसे कहा था कि उनकी पत्नी कैंसर की मरीज हैं और उन्हें पुर्तगाल जाने की जरूरत है। वहीं भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी इस पूरे मामले में सुषमा स्वराज का समर्थन किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुषमा स्वराज ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक था और मानवीय संवेदना रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा ही कदम उठाता। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के उच्चायुक्त से सुषमा स्वराज ने कहा था कि ललित मोदी के मामले में आपके नियमों के अनुसार जो भी आपको ठीक लगे आप वो ही कदम उठाएं। वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी सुषमा स्वराज का समर्थन किया। उनके अनुसार जो भी व्यक्ति इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उससे इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि स्वराज ने ट्विटर के जरिए पहले ही अपनी सफाई दे दी है और मामला बहुत ही साफ है, जिसमें एक भारतीय ने अपनी कैंसर से पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए उनसे मदद मांगी थी। और ऐसा भी नहीं है कि सुषमा स्वराज ने इसमें कोई नियम तोड़ा। उन्होंने इस मामले पर ब्रिटेन के हाई कमिश्नर से बात की और कहा कि अगर उनके देश का कानून इसकी अनुमति देता है तो वो ललित मोदी की मदद कर दें। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने इस मामले के सुर्खियों में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर स्पष्टीकरण देने की अपील की और साथ ही सुषमा स्वराज से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग कर डाली। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा,
मैं सुषमा स्वराज जी का बड़ा सम्मान करता हूं। मैं अपील करता हूं सुषमा जी से कि वे मॉरल ग्राउंड पर तत्काल इस्तीफा दे दें।
वहीं CPIM नेता वृंदा करात ने इस पूरे मामले को अनुचित व्यवहार करार दिया। उन्होंने कहा,
इट इज अ केस ऑफ ग्रेव इम्प्रोप्रायटी एंड आई बिलीव इट इज द प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूटी टू आंसर।
ये पूरा मामला बहुत बड़ी अनियमितता का है। ऐसे में ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है कि वो अपने कैबिनेट मंत्री के ऐसे व्यवहार पर सामने आए और स्पष्टीकरण दें।
IPL के पहले कमिश्नर ललित मोदी पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं और फिलहाल वह ब्रिटेन में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। वे इन आरोपों को खारिज करते आए हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि स्वराज ने व्यक्तिगत तौर पर उच्चायुक्त से बात की थी या सरकार का ललित मोदी के मामले में ये रुख था। ये भी स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में विदेश मंत्री का दखल क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है या नहीं।
IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को सुषमा स्वराज से मिली मानवीय आधार पर कथित मदद। ब्यौरा सुना रहे थे अमल चौधरी। इधर दिल्ली में वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने आज देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया, साथ ही दिल्ली में भी। और पूर्व सैनिकों का आरोप है कि सरकार ने कई दशकों से उनकी बुनियादी मांग की अनदेखी की है। अपने पदकों को राष्ट्रपति को लौटाने दिल्ली आए इन भूतपूर्व सैनिकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली भी की। दिल्ली से BBC संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
ये आवाज हवलदार गुरजन सिंह के लिए है, मगर ये आवाज किसी जंग में मोर्चा संभालने के लिए नहीं दी जा रही है। यहाँ एक अलग मोर्चा है जो दिल्ली की सड़कों पर भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों और जवानों ने खोल रखा है। देश के विभिन्न हिस्सों से जमा हुए भूतपूर्व सैनिकों ने एक पद एक पेंशन की अपनी मांग को लेकर पहले भी अपने मेडल भारत के राष्ट्रपति को लौटाए थे। वो एक बार फिर राष्ट्रपति भवन जाकर अपने मेडल लौटाने का अभियान चला रहे हैं। ब्रिगेडियर के पद से सेवानिवृत्त हुए जगदीश कुमार नंदपाल ने मुझे बताया कि एक पद एक पेंशन के लागू नहीं होने से भूतपूर्व सैनिकों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि अभी भी देखिए, मैं 2003 में रिटायर हुआ, मेरी पेंशन जो है बेसिक पेंशन 29,145, लेकिन जो अब रिटायर हो रहे हैं 2006 के बाद उनकी पेंशन 40-42 हज़ार है, तकरीबन 20 हज़ार का फर्क पड़ जाता है।
वायुसेना से रिटायर हुए महेश गुजर भी दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा पूर्व सैनिकों में से एक हैं, जो रिटायरमेंट के 15 सालों के बाद भी एक पद एक पेंशन का इंतजार कर रहे हैं।
मैंने इंडियन एयरफोर्स में टेक्निकल ब्रांच में सर्विस की है 20 साल, 15 साल छोड़े भी हो गया, लेकिन हमने बड़ी उम्मीद के साथ मोदी जी को वोट दिया और इन्होंने रेवाड़ी में भी लोकसभा चुनाव से पहले एक फौजियों की रैली की थी, बोला था हम वन रैंक वन पेंशन मैं दूंगा। मोदी जी बस विदेश यात्रा में लगे हुए हैं, अभी मणिपुर में सेना ही काम आई, 18 हमारे लोग मारे गए, और उसका फिर सेना ने ही जवाब दिया।
हरियाणा से आए सेना के पूर्व कप्तान सुखबीर अहलावत का कहना था कि अगर सैनिकों की सेवानिवृत्ति की उम्र भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 60 या 62 कर दी जाए तो वो एक रैंक एक पेंशन की मांग नहीं करेंगे।
राजेंद्र सिंह सपैरो वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस समय पे इस केस को उठाया गया था, लेकिन उस समय से लेके अभी एक साल पहले तक, आफ्टर दैट अभी एक साल पहले बीजेपी ने मोदी जी बोले मैं व्हाइट पेपर लाऊंगा इस पे, व्हाइट का उसमें ब्लैक पेपर भी नहीं आया आज तक। 30,000-25,000 के बीच में मेडल पहले डिपॉजिट किए हुए हैं जो कि राष्ट्रपति भवन में रखे हुए हैं, और अभी जो बचे हुए थे वो अभी और आज भी वहाँ पे मेडल लेकर आए हुए हैं, वो मेडल देंगे
वापस।
मेडल तो हम 6 साल से देते आ रहे हैं लगातार, सभी मेडल हमारे पास, कोई मेडल नहीं, सब यहाँ पे दिए हुए, इसीलिए कि हमारे को हमारा जो हक है हमारे को हक नहीं मिलता।
नौसेना में कई साल काम करने के बाद रिटायर हुए एडमिरल HC मल्होत्रा को अफसोस है कि संसद और विधानसभा में बैठकर नेता अपने वेतन भत्ते को बढ़ा लेते हैं मगर कोई सैनिकों की सुध लेने वाला नहीं है।
पार्लियामेंट में बैठ के, विधानसभा में बैठ के सब अपनी अपनी तनख्वाह जो है वो डबल कर लेते हैं 2 घंटे के अंदर। उनके पास क्या हक है कि अपनी तनख्वाह को बढ़ा लें और बाकी को सुने भी नहीं। हम 40 साल से हमारे जवान भी लड़ रहे हैं या 30 साल से लड़ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ झूठा वादा और ब्यूरोक्रेसी जो है ये क्यों
कर लिया उन्होंने?
ये अन्याय बहुत ही उच्च कोटि का है, अपने लिए सब कुछ है।
देश में 25 लाख से ज्यादा ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो लंबे समय से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे हैं क्योंकि वो दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तुलना में जल्दी रिटायर हो जाते हैं, मगर नौकरशाहों को 33 साल तक की नौकरी के बाद आखिरी तनख्वाह का 50% पेंशन मिलता है जबकि सैनिक आमतौर पर अपनी सेवा के 10 से 12 साल के अंदर ही रिटायर हो जाते हैं और उन्हें आखिरी तनख्वाह से 50% से कुछ कम ही पेंशन मिल पाती है। इसीलिए तो वो दिल्ली की सड़कों पर जमा होकर अपने हक की मांग कर रहे हैं। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
निखिल रंजन के साथ आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो, bbchindi.com और मोबाइल पर भी। भारत में 21 जून को योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि सरकार इस योजना के जरिए अपने धार्मिक एजेंडे पर अमल कर रही है। उनका कहना है कि योग एक धार्मिक क्रिया है जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। सुहेल हलीम की ये रिपोर्ट सुनिए।
सूर्य नमस्कार सूरज की पूजा है या सिर्फ एक एक्सरसाइज, देश में राय धर्म की बुनियाद पर बटी हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लगता है कि हुकूमत स्कूलों में योगा शुरू करके अपने धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी,
अगर कहीं किसी भी एक्सरसाइज के अंदर किसी को का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो आप उससे मत कराइए, नंबर एक। नंबर दो ये कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसको कंपल्सरी कर दें।
उधर हुकूमत को लगता है कि जब योगा करने पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं तो पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों परेशान है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज,
अगर उन्हें ये मालूम होता कि 47 मुस्लिम देशों ने, वो भी वो देश जो OIC के मेंबर्स हैं, उन्होंने कोई स्पॉन्सरशिप दी है, वो केवल समर्थन नहीं दिया, वो इसके सह आयोजक बने हैं, तो शायद वो ये बात कभी नहीं कहते। ये जानकारी के अभाव में कही गई बात है।
लेकिन ये विवाद सिर्फ योगा तक सीमित नहीं। जब से देश में BJP की हुकूमत आई है, मुस्लिम संगठनों को एक साजिश की बू आ रही है। कमाल फारूकी,
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी भी किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ती है। हमारा काम सिर्फ वन ट्रैक माइंड है हमारा, हमें और कुछ नहीं है कि हिंदुस्तान में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले हुए हैं उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस ना किया जाए।
योगा के गुरु आदर्श कपूर कहते हैं कि एक्सरसाइज का ये तरीका ऋषि मुनियों की देन जरूर है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं की विरासत नहीं।
योगा इज नॉट हिंदू बिकॉज इट हैज बीन प्रैक्टिस एंड इट हैज बीन फाउंड बाय।
योगा सेहत के लिए अच्छा है, ये तो ज्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन उसके कुछ आसान इस बहस की तरह पेचीदा भी होते हैं। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
BBC हिंदी के 75 साल पूरे होने पर पूरे साल खास कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है जिसमें हम आपको BBC आर्काइव से कुछ अनमोल चीज़ें भी सुनवा रहे हैं। आज संडे दिन भर में गज़ल की दुनिया के शहनशाह कहे जाने वाले मेहदी हसन पर हम आपको उनका एक पुराना इंटरव्यू सुना रहे हैं। 2012 में 13 जून को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। बीबीसी हिंदी के विख्यात प्रसारक परवेज आलम ने 1989 में ये इंटरव्यू लिया था।
चम चम चमके चांदनी रे, जैसे चांदी राखे तू कोई रेत पे लिखी हुई तहरीर नहीं, वक्त के साथ जो मिट जाए वो तस्वीर नहीं। मैं
वाह
तेरी याद को
सुनहरी रेत और सुनहरी धूप के प्रांत राजस्थान में जन्मा ये स्वर इस शताब्दी के महानतम गजल गायकों में से एक है। इसी स्वर की कहानी के साथ परवेज आलम का नमस्कार। मेहंदी हसन की कहानी, मेहंदी साहब कहानी तो आप ही कहेंगे।
हाँ, बस ये है मेरी हिस्ट्री कि मैं खानदानी कलावंत फैमिली से हूँ। 16 जनरेशन यानी 16वीं पुश्त है मेरी, मैं 16वां आदमी हूँ। मेरे वालिद दादा परदादा तो इस तरह महाराजा जयपुर के ख़ास गवैयों में से थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे दादा परदादा। और जयपुर में आमेर किला जो है उसमें आज भी वो हमारा टूटा फूटा खंडरात की शक्ल में घर मौजूद है, जिस पे गुनीजन खाना लिखा हुआ है। बाद में मेरे बुज़ुर्गों को शिफ्ट किया झुंझुनू, वो एक रियासत मंडावा है। तो इस तरह वो जहेज में एक किस्म से जैसे गवैये पहलवान हाथी घोड़े और जिस तरह वो जहेज में चीज़ें दी जाती थी, इस तरह गवैये भी उस ज़माने में दिए जाते थे। तो इस तरह हमारे बुज़ुर्ग यहाँ झुंझुनू साइड में आ गए, वहाँ हमें ज़मीनें मिल गई और लूना गांव में ज़मीन मिली, इस तरह हम वहाँ शिफ्ट हो गए।
लूना में ही आपकी पैदाइश हुई?
पैदाइश मेरी लूना में हुई। 6 साल का था तो मैंने वालिद साहब को ऐसे ही मुँह लगा हुआ था, तो मैंने कहा जी आप ध्रुपद गाते हैं, ख्याल अस्थाई गाते, मैं भी एक ख्याल बना के लाया हूँ। कहले क्या बनाया तुमने? मैंने कहा अड़ाने का एक ख्याल बनाया, कहना सुनाओ। तो मैंने वो अपनी उम्र के हिसाब से शायरी की। तो ज़्यादा यूपी में राजे महाराजों में मुझे रखते थे साथ अपने वालिद साहब, तो पूर्वी जबान थी मेरी उस वक्त, उसको भी थोड़ा सा उस पर अबूर था। तू जा रे बुगला जा, आवत है बुढ़ा ढेरा, उड़ावत है बुगला, ये 3 ताल में मैंने कंपोज की सुनाया। तो उस दिन से मेरे वालिद साहब ने कहा भाई बहुत अच्छा ख्याल तुमने बनाया, लेकिन आज से तुम हमारी गिरफ्त में रहोगे और आज से तुम्हारी तालीम शुरू करेंगे हम। तो 6 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त, तो तालीम शुरू की। तो तालीम शुरू हो गई, उसके बाद 8 साल की उम्र में महाराजा बरूदा के सामने फर्स्ट परफॉर्मेंस थी मेरी। बसंत पंचम राग मैंने गाया 40 मिनट, 8 साल का था, वो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी
8 साल के
उम्र में थी। बस फिर उसके बाद गाता रहा मैं और पार्टीशन में फिर पाकिस्तान चला गया।
फिर बाद में आप स्पीच सीखते रहे कुछ और लोगों से भी?
सीखने को तो आज भी
जी, कौन कौन लोग रहे वो?
आज भी मैं सीख रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं पंडित गुलाम कादिर, पंडित का खिताब उनको इसलिए कि वो PhD डिग्री म्यूजिक में उन्होंने भारत खंडी भी की है, तो वहाँ से पंडित का खिताब उनको मिला, तो उनसे आज भी मैं सीखता हूँ, पूछता रहता हूँ।
और आज भी आप उन्हें याद करते हैं और आज भी आपकी गायकी में वर्षों की आराधना और उससे जन्मी मिठास निहित है।
खातिर ये है बाजी ये दिल, इसमें जीत से मात रही, इसमें जीत से मात भले, ढलते ढलते रात ढले, ढलते ढलते रात ढले, जब उस जुल्फ की बात चली।
तीसरी पुश्त में घराना कायम हो जाता है और मैं اپنے ہی گھرانے سے اپنے والد صاحب اور بہرام خان گائک جو ہوئے ہیں خان صاحب بہرام خان جی ان کے انہیں کے نکاس میں سے ہمارے خاندان کا نکاس ہے.
تو پھر گھرانہ کیا کہلاتا ہے؟
بہرام خان جی کا.
بہرام خان جی کا گھرانہ. آپ نے جتنی بات کہی میں اتنا سمجھا کہ آپ کی بڑی مضبوط بنیاد رہی ہے شاستریہ سنگیت کی.
جی.
یعنی سوچیے 6 برس سے آپ نے سیکھا اور 8 سال کی عمر میں اتنے بڑے استر پہ اپنا کاریکرم پیش کیا.
جی جی.
اور پھر آپ بعد میں غزلوں کی طرف آ گئے.
نہیں, غزلوں کی اس لیے کہ غزل جا رہی تھی اور میری جو وائس کوالٹی تھی وہ کلاسیکل کے بجائے لائٹ کلاسیکل میں بڑا بہت فٹ اور موزوں, یعنی سافٹنس اور بیس اور یہ سب کچھ ملا کر, تو میں نے خود محسوس کیا کہ یہ لائٹ کلاسیکل آواز کی کوالٹی کے حساب سے یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو وہ میں نے کلاسیکل کو, بنیاد میری کلاسیکل ہی ہے, غزلیں سب کلاسیکل راگوں میں میں نے کمپوز کی لیکن لائٹ کر لیا میں نے اپنے.
جی.
تو وہ پبلک کو پسند آیا سارا رنگ میرا, اور آج اللہ کی مہربانی ہے کہ کامیاب ہے میرا مشن.
راجستھان میں جس جگہ آپ کا جنم ہوا لونا,
جی,
ضلع جھنجھنو, آپ اکثر وہاں گئے بھی ہیں.
کہیں بھی چلے جائے لیکن جنم بھومی جو ہے جہاں پیدا ہوتا آدمی, تو وہ جگہ تو کبھی نہیں بھولے گا. وہ
یاد رکھتے ہیں آپ؟
بالکل. میں تو وہاں تو میری سڑک, ابھی میں اپنے گاؤں کے لیے سڑک میں نے کیا بنوائی, گورنر راجستھان نے مجھ سے پوچھا تھا, میں نے کہا جی وہ روڈ نکل گیا لیکن میرے گاؤں کے باہر سے نکلا ہے.
اچھا.
تو میں یہ چاہتا ہوں کل ہم بنوا دیں گے. میں نے کہا نہیں, میرے پاس جو بیچنے کی ایک چیز ہے وہ بکوا دیجیے اور وہ پیسہ سارا میں ڈونیٹ کروں گا سڑک کے لیے. کہلے کیا؟ میں نے کہا وہاں میں جھنجھنو میں ایک پروگرام کروں گا. تو وہ 237,000 کا پروگرام ہوا تھا, اتنی رقم آ گئی تھی. وہ ساری رقم میں وہاں گورنمنٹ کو دے دیا میں نے کہ یہ اس میں اگر سڑک بن جاتی ہے تو بنا دیجیے اور کم پڑتے ہیں زیادہ خرچہ جو بھی کچھ ہے. تو وہ سڑک بن گئی ہے, آج میرے گاؤں سے نکل گئی ہے وہ. تو میری تو نسبت ہے وہاں سے پیدا ہوا ہوں.
سڑک بننے کے بعد آپ گئے وہاں پھر؟
اس سڑک کئی بار چلے. کئی بار گئے.
اس سڑک کا نام مہدی حسن سڑک تو نہیں رکھ دیا گیا؟
نہیں نام اس کی تو خیر.
دیکھ تو دل کے جانے سے اٹھتا ہے, دیکھ تو جانے سے اٹھتا ہے, یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے, دیکھ تو کس دن جلتی ہے یہ فلک شولا, ایک صبح یا سے اٹھتا شولا, ایک صبح یا سے اٹھتا
غزل 1950 تک محدود ہو گئی تھی, ختم ہونے لگی تھی. تو اس کو تھوڑا میں نے پیش کرنے کے لیے پبلک کے سامنے کہ غزل زندہ ہو, تو اس کو کلاسیکل رنگ دیا. کلاسیکل گاتے گاتے ایک دم میں غزلوں کو لیا لیکن غزلوں کو کلاسیکل رنگ میں کمپوز کر کے پیش کیا, تو وہ مشن میرا کامیاب ہوا. 1953 میں میں نے فلم شکار کے لیے اسٹارٹ لیا کراچی ایسٹرن اسٹوڈیو سے, اور اسی دوران ریڈیو پاکستان کراچی سے میں کلاسیکل شروع ہوا, لیکن بعد میں میں نے چینج کیا اس کو, غزلوں کو راگوں میں میں نے کمپوز کر کے اور پیش کیا. تو اس میں بہادر شاہ ظفر کی غزل تھی, بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہیں تھی, اور یہ 54 میں,
یعنی 1954 میں آپ نے اسے سنگیت بدھ کیا تھا.
अच्छा? जी बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो नहीं थी।
अच्छा इसकी धुन जो आज हम सुनते हैं जो आपकी डिस्क में है
जी
इसी तरह की
यही है बिल्कुल कंपोजिशन थी उसकी।
बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करा बेकरारी तुझे दिल कभी ऐसे तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थी।
हमसे पूछो कि गजल क्या है गजल का फन क्या चंद लफ्जों में जैसे आग छिपा दी जाए।
मेहदी हसन ने साल 2012 में 13 जून को इस दुनिया को अलविदा कह दिया लेकिन बीबीसी के पास उनसे बातचीत का ये अनमोल मोती मौजूद है जिसे हमने आपको भी सुनवाया। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से।
जी देखिए फतुल्ला में भारत और बांग्लादेश के बीच जो एकमात्र टेस्ट मैच खेला गया वो आखिरकार उम्मीदों के अनुरूप ड्रा रहा क्योंकि बारिश का साया लगभग 5 दिन
हम तो लगातार ही देखते रहे।
और हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेश को फॉलो ऑन के लिए मजबूर भी किया। दूसरी पारी में केवल 15 ओवर का खेल हो सका जिसमें बांग्लादेश ने 23 रन बनाए बिना किसी नुकसान के संभल कर बल्लेबाजी की और बांग्लादेश की पहली पारी 256 रन पर समाप्त हुई थी। भारत को 206 रन की बढ़त मिली। भारत के लिए अच्छी ये बात रही कि भारत के आर अश्विन ने 87 रन देकर 5 विकेट लिए जबकि लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे हरभजन सिंह के खाते में भी 3 विकेट जुड़े। उन्होंने 64 रन खर्च किए इसके लिए। उधर टेनिस के कोर्ट पर चौथी वरीयता हासिल जोड़ी भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया ने स्टुटगार्ट ओपन में युगल वर्ग का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर पेया और ब्राजील के ब्रूनो सुआरेस की जोड़ी को 5-7, 6-2, 10-7 से मात दी। और थोड़ी देर पहले पुरुष एकल वर्ग का खिताब शीर्ष वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल ने 8वीं वरीयता हासिल सर्बिया के विक्टर ट्राइकी को 7-6, 6-3 से हराकर जीता। उधर भारतीय पुरुष हॉकी टीम इन दिनों बेल्जियम में है जो विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स के मुकाबले खेलेगी लेकिन उसे अभ्यास मैच में बेल्जियम के हाथों 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इससे पहले भारत ने फ्रांस को 1-0 से पराजित किया था। तो अब अगर भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट जो मैच था वो तो ख़त्म हो गया लेकिन अगर आगे बात की जाए तो अब नजरें रहेंगी उनके बीच जो 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जाएंगे।
बहुत शुक्रिया आदेश जी। और अब कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
ललित मोदी वीजा विवाद मामले में विपक्ष ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग की है। वहीं बचाव में आई सरकार और भाजपा ने कहा है कि सुषमा स्वराज ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर की मदद मानवीय आधार पर की है। किसी धूमकेतु पर उतरने वाले पहले अंतरिक्षयान फिले ने 7 महीने बाद धरती पर वैज्ञानिकों से संपर्क किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंतरिक्षयान फिले ने पिछले साल धूमकेतु 67P पर उतरने के बाद सिग्नल भेजना बंद कर दिया था। यमन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में होने वाली बातचीत के एक दिन पहले हूती विद्रोही ने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका की अदालत में सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर को गिरफ्तार कर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हवाले करने के लिए दायर एक याचिका की सुनवाई हो रही है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। आपसे अगली मुलाकात होगी रात 9:30 बजे घटना चक्र में। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।